राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम
जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन
जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन
जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन
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 जय जय राधे जय जय श्याम
जय राधे जय जय
जय जय राधे जय जय श्याम
जय जय राधे
जय जय श्री वृंदावन
जय जय श्री वृंदावन
जय जय राधे जय 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 राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन
जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन
जय जय श्री वृंदावन
जय जय श्री वृंदावन
जय जय श्री
जय जय श्री वृंदावन
जय जय श्री
जय जय श्री वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि
रहे थे। पिछले वर्ष आप लोगों ने कंस वध तक की लीला का श्रवण किया और उसी की पुनरावृत्ति के रूप में पुनरावलोकन के रूप में आज हम लोग उसी दृश्य का अवलोकन करेंगे दर्शन करेंगे किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने कंस का वध किया। उसके पहले बहुत सारे असुरों का उन्होंने वध किया चाणूर मुष्टिक कुबलया पीड़ आदि। तो इस दृश्य का आप लोग अवलोकन करेंगे एक संक्षिप्त नाटिका के रूप में एक झलक मात्र उसका देखेंगे और इसका आप लोग ध्यानपूर्वक अवलोकन करें उसके पश्चात आगे की कथा बढ़ेगी। हरे कृष्ण।
पंचकूल तिलक महाराजाधिराज महाराज कंस पधार रहे कृष्ण बलराम पधार रहे हैं।
स्वागतम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram
Krishna Balaram Jaya
Kali Balaye
Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram
Balaram Jaya Krishna Balaram
Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram
Gauranita Sri Sri Gauranita
Gauranita Sri Gauranita
Gauranita Sri Sri Gauranita
Gauranita Sri Gauranita
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Balaram ki
Hare Krishna Hare Krishna aap logon ne abhi ye sankshipt natika dekhi hamari aasha hai ki aap logon ko ye natika बहुत ही पसंद आई होगी तो कुछ क्षणों के लिए इस मंदिर से श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर इस्कॉन पुणे के अध्यक्ष श्रीयुत राधेश्याम प्रभु जी आप लोगों को संक्षिप्त संबोधन देना चाहेंगे राधेश्याम प्रभु
हरे कृष्ण Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam was spoken by Shukadeva Goswami to Parikshit Maharaj at a very special moment of crisis.
Srimad Bhagavatam ki katha Parikshit Maharaj ko Shukadeva Goswami ji ne sunai thi. ऐसे समय में जबकि वह बहुत ही कष्ट की स्थिति में थे और बहुत ही विशेष ऐसी स्थिति थी जब उनके प्राण पर एक तरह से आपत्ति थी
परीक्षित महाराज हैड आस्क्ड सुखदेव गोस्वामी टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर वेरी रिलेवेंट टू ऑल ऑफ आवर लाइव्स
परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि जीवन के अंतिम समय में ऐसे समय में हमारा क्या परम उद्देश्य है
सो द टू क्वेश्चंस ही आस्क्ड वर वन वाज व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ जनरल व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन इन द सोसाइटी एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ डाइंग मैन
उन्होंने दो प्रश्न उनसे पूछे दो मुख्य प्रश्न कि एक समाज में व्यक्ति का परम उद्देश्य क्या है और जब व्यक्ति जीवन परित्याग कर रहा हो उस समय उसे क्या करना चाहिए.
एंड इन रेस्पॉन्स टू हिज क्वेश्चंस शुकदेव गोस्वामी स्पोक दिस एंटायर श्रीमद् भागवतम विच इज मोस्ट रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अवर लाइव्स.
और सुखदेव गोस्वामी ने इन प्रश्नों का उत्तर प्रदान किया जो कि जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है.
सो ही टोल्ड हिम तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्चता भयम्. ही टोल्ड हिम दैट वन शुड हियर द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड.
परीक्षित महाराज से श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि व्यक्ति को भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए.
एंड वन शुड सिंग दोस ग्लोरीज
और भगवान की महिमा का गायन करना चाहिए.
एंड वन शुड रिमेम्बर देम
और हरेक समय भगवान को स्मरण करना चाहिए.
एंड बाय डूइंग दिस थिंग्स वन कैन बिकम टोटली फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फियर.
और इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आचरण करता है तो समस्त प्रकार के भयों से वह मुक्त हो जाता है.
इनफैक्ट व्हेन वन हियर्स कृष्ण कथा अकॉर्डिंग टू भागवतम वन बिकम्स फ्री फ्रॉम द लैमेंटेशन ऑफ द पास्ट इल्यूजन ऑफ द प्रेजेंट एंड फियर ऑफ द फ्यूचर.
वास्तव में इस प्रकार से कोई यदि श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करता है तो भूतकाल की समस्त आपत विपत्तियों से जिससे वह गुजरा है उससे उसकी चिंता से मुक्त हो जाता है और वर्तमान का वास्तविक लाभ वह प्राप्त करता है और भविष्य की समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है.
जस्ट एज द गैंजेस प्यूरिफाइज एनीवन हु टेक्स अ डिप इन इट सिमिलरली द श्रीमद् भागवतम प्यूरिफाइज द स्पीकर हियरर एंड द क्वेश्चनर.
और इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम सुनने वाला और श्रीमद् भागवतम सुनाने वाला अर्थात श्रोता एवं वक्ता दोनों का चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है.
एंड वन शुड हियर श्रीमद् भागवतम फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ डिवोटी हु हैज हर्ड फ्रॉम अनदर सिमिलर डिवोटी.
और वास्तव में श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण एक शुद्ध भक्त से करना चाहिए जो कि जिन्होंने इस भागवत के ज्ञान को शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से धारण किया है.
ऑल्दो भागवत सप्ताह इज समथिंग वेरी कॉमन इन इंडिया विच गोज ऑन एवरीवेयर एंड लैक्स ऑफ पीपल अटेंड इट स्टिल द भागवत सप्ताह हेल्ड हियर इज वेरी स्पेशल बिकॉज इट इज स्पोकन बाय ए स्पीकर हु कम्स इन द डिसिपलिक सक्सेशन ऑफ ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय.
हम लोग जैसा कि देखते हैं भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा का आयोजन बहुत ही हुआ करता है. आम चलन है श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन और कथा श्रवण. किंतु यहाँ जिस भागवत कथा में हम लोग बैठे हैं यह एक विशिष्ट भागवत की कथा है क्योंकि यह एक प्रामाणिक परंपरा ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय की छत्र छाया में उसके अंतर्गत हुआ है.
हियरिंग भागवत कथा फ्रॉम वन हु इज नॉट ए डिवोटी विल किल अवर टेंडेंसी टू लव एंड सर्व कृष्णा.
श्रीमद् भागवत की कथा यदि हम ऐसे लोगों से सुने जो कि भक्त नहीं हैं, तो इसका परिणाम यह होता है कि हमारे हृदय में कृष्ण की सेवा करने की जो सरल वृत्ति है सहज वृत्ति है वह समाप्त हो जाती है.
बट हियरिंग कथा भागवत कथा फ्रॉम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इट एनहांसेस अवर डिवोशन एंड मेक्स अ जुबिलेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस.
किंतु यदि यही भागवत कथा हम एक शुद्ध भक्त से यदि श्रवण करें तो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागृत होता है और हम कृष्ण भावना भावित होते हैं.
इट्स लाइक द डिफरेंस बिटवीन लाइम वाटर एंड मिल्क ऑल्दो दे लुक बोथ ऑफ देम लुक व्हाइट. इट्स लाइक द डिफरेंस बिटवीन लाइम वाटर एंड मिल्क.
यही एक अंतर है जो कि जिस प्रकार से चूने के जल और दूध में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि चूने का जल और दूध देखने में एक जैसा ही लगता है किंतु दोनों के पान का अलग अलग फल प्राप्त होता है. इसी प्रकार से इस दो प्रकार की भागवत कथा एक शुद्ध भक्त के मुख से और एक अभक्त के मुख से सुनने का यह अंतर है.
ड्रिंकिंग लाइम वाटर बर्न्स अवर माउथ एंड होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट whereas drinking milk nourishes our body.
यदि हम चूने के जल का पान कर लें तो हम सबों को पता है कि इसका क्या परिणाम होगा. हमारा पूरा जो ये है या व्यवस्था है, तंत्र है, शारीरिक तंत्र, वह जल जाएगी. किंतु यदि हम दूध का पान करते हैं तो उससे हमारा शरीर पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है.
So all of us here are assembled to hear Srimad Bhagavat Katha from His Holiness Lokanath Swami Maharaj, who represents our parampara so wonderfully that he has been year after year nourishing our hearts and souls and increasing our devotion to Shri Shri Radha Kunja Bihari.
तो हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर हम लोग को प्राप्त हुआ है श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज जी के मुखारविंद से भागवत कथा श्रवण करने का, जो कि ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा को अत्यंत उज्जवल रूप से, विशिष्ट रूप से समाज को प्रदान कर रहे हैं, और जिनके कथा श्रवण मात्र से ही श्री श्री राधा कुंज बिहारी के श्री चरणों में हमारा परम अनुराग उत्पन्न होता है.
Anybody who achieves this association by hearing from him can certainly confidently say that their hearts have become softened and their desire to serve Krishna has become greatly expanded simply by attending his kirtans and lectures.
Matra इस प्रकार की कथा, जैसी कथा महाराज जी श्रवण कराते हैं, इस कथा का श्रवण मात्र करने से हम अनुभव कर सकते हैं, बहुतों ने किया है और हम लोग, आप लोग सभी लोग ऐसा करेंगे कि इस कथा के श्रवण मात्र से ही हमारे चित्त की वृत्ति शांत होती है, हमारा चित्त निर्मल होता है और भगवान की दिव्य सेवा करने के प्रति, श्री श्री राधा कुंज बिहारी की सेवा करने के प्रति हमारा विशेष आकर्षण होता है.
We cannot estimate our unlimited good fortune of having his association, because in a year he gives only 4 saptahas in 4 different parts of the world, and he is an international figure who travels all over the world and gives saptaha like this. And I thank him specifically for choosing Pune to be one of those places for giving saptaha.
हम लोग अपने सौभाग्य का आकलन नहीं कर सकते कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं श्रील महाराज जी की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त करके, क्योंकि महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हैं, प्रभुपाद जी की सेवा में नियोजित हैं और पूरे विश्व का भ्रमण करते रहते हैं, एवं पूरे वर्ष में महाराज जी 4 स्थानों पर भागवत सप्ताह का जो ये आयोजन होता है उस पर कृपा प्रदान करते हैं, 4 स्थानों पर भागवत कथा श्रवण कराते हैं और पूना उसमें से एक भाग्यशाली स्थान है, इसलिए पूनावासी भी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि इस कथा का श्रवण हम लोग करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं.
जस्ट एज ऑल द ब्रजवासीज फेल्ट अ ग्रेट प्रोटेक्शन एंड जॉय अंडर द शेल्टर ऑफ गोवर्धन व्हेन लॉर्ड कृष्णा लिफ्टेड द गोवर्धन हिल, इन द सेम मैनर व्हेन आई हियर महाराजस कीर्तन एंड लेक्चर्स आई फील अ ग्रेट सेंस ऑफ जॉय, डिलाइट एंड प्रोटेक्शन.
जिस प्रकार से ब्रजवासी भक्तगण ने सभी प्रकार के भयों से मुक्ति पाई थी और पूर्ण रूप से वो शांति का अनुभव कर रहे थे जब भगवान ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण किया था और उनकी छत्र छाया में सभी लोग बिल्कुल निर्भय थे, उसी प्रकार से हम लोग जब महाराज की छत्र छाया में उनका कथा श्रवण करते हैं, महाराज की छत्र छाया में रहते हैं, तो हम लोग भी इसी प्रकार का अनुभव करते हैं. पूरे भागवत सप्ताह में विशेष रूप से इस तरह का अनुभव करते हैं.
दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्योर कृष्ण कथा,
और यही वास्तव में शुद्ध कृष्ण कथा का परिणाम है, प्रभाव है.
सो इनवाइट ऑल ऑफ यू टू जॉइन दिस भागवत सप्ताह फॉर द कमिंग 7 डेज, मॉर्निंग एंड इवनिंग, एंड एक्सपीरियंस कंप्लीट शेल्टर ऑफ श्री श्री राधा कुंज बिहारी हियर अंडर दिस वंडरफुल पंडाल. And this is the end of the year, and this is such a wonderful, great boost in our Krishna consciousness, so that in the coming year, 2005, we can become doubly jubilant in increasing our Krishna consciousness and rendering service to this wonderful mission of Srila Prabhupada.
तो वर्ष के समापन में हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं इस दिव्य भागवत सप्ताह के श्रवण करने के लिए, जिस कथा के श्रवण मात्र से हम लोगों का हृदय निर्मल होगा, और भगवान की सेवा में हम लोग अधिक उत्साह से अधिक आनंद के साथ नियोजित हो सकेंगे, जुट सकेंगे। तो इस कथा में आप लोगों का बार बार आमंत्रण है और आपसे निवेदन है कि इसी उत्साह के साथ पूरे भागवत सप्ताह में यहाँ उपस्थित हों।
लोकनाथ स्वामी महाराज की
जय,
श्रील प्रभुपाद की
जय,
श्रीमद् भागवत सप्ताह की
जय,
श्री श्री राधा कुंज बिहारी की
जय,
श्री श्री गौर नेता की
जय,
गौर भक्तवृंद की
जय।
थैंक यू वेरी मच,
धन्यवाद। वेदन है, एक सूचना है कि यदि इस पंडाल में आप लोगों को पर्याप्त स्थान प्राप्त नहीं हो तो मंच की दाहिनी ओर प्रसाद हॉल में भी व्यवस्था की गई है भक्तों के बैठने के लिए, और वहां से भी, जैसा कि आप लोग स्पष्ट पाएंगे, वहां से भी महाराज जी के दर्शन प्राप्त होंगे और कथा आप लोग स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। तो यदि पर्याप्त स्थान आप लोग को इधर सामने प्राप्त नहीं हो तो इधर आप लोग आ सकते हैं, प्रसाद हॉल में बैठने की व्यवस्था है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम।
पुनः धन्यवाद आप सभी के पधारने के लिए, और हम भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए जैसे ही जैसे कि हम भगवान की लीला का मंचन का दृश्य दर्शन कर रहे थे, चानुर मुस्टिक शल तोशल कूट इत्यादि राक्षस पहलवानों का वध किए कृष्ण और बलराम, कृष्ण स्वयं कंस का वध किए, तो बलराम जी कंक आदि कंस के अन्य 8 भाइयों का वध किए, इसके उपरांत कृष्ण बलराम वसुदेव और देवकी के पास पहुंचते हैं। वसुदेव और देवकी के ही तो पुत्र है, 7वें पुत्र है बलराम और 8वें है कृष्ण। वैसे कृष्ण कुछ क्षणों के लिए अपने माता पिता श्री वसुदेव और देवकी से मिले थे कंस के कारागार में, लेकिन बलराम ने तो उनका दर्शन भी नहीं किया था। देवकी के गर्भ से वे स्थानांतरित हुए थे रोहिणी के गर्भ में, तो पहली बार मिल रहे हैं बलराम वसुदेव और देवकी को, और कृष्ण दूसरी बार मिल रहे हैं। पहला दर्शन कुछ संक्षिप्त ही रहा, बलराम को 11 वर्ष के हैं और कृष्ण 10 वर्ष की उनकी आयु है। जब वसुदेव और देवकी को मिलते हैं तो उनके वचन हैं, नास्मत्तो यवयोस्तात् नित्योत्कंठितयोरपि बाल्यपौगंडकैशोरः पुत्राभ्याम भवन क्वचित्। वे दोनों कहते हैं वसुदेव और देवकी को, कि हमारा बालपन बीत गया, पौगंड अवस्था भी बीत गई, अब हम किशोर हैं, इन सारी अवस्थाओं में हम आप दोनों से दूर रहे, हम दोनों भी एक दूसरों से मिलना चाहते थे, उत्कंठित थे, लेकिन मिल नहीं पाए। जब कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी के साथ हैं, तो वे इस बात का अनुभव करते हैं कि वसुदेव और देवकी तो वह दूर से उनका नमस्कार कर रहे हैं। कृष्ण और बलराम के प्रति उनके मन में ईश्वर भाव है, भगवान महान है, ये कोई देवता है, भगवान है, इसको ज्ञान मिश्रित भक्ति कहते हैं, या वैकुंठ में जिस प्रकार की भक्ति होती है। वे है उनके पुत्र और उनको ही नमस्कार कर रहे हैं, उनसे दूर ही है, बच्चे सामने हैं, उनको देखते ही जैसे वृंदावन में यशोदा और नंद बाबा कितने लाड प्यार से उनके उठाते, गोद में बिठाते, लालन पालन होता, चुंबन होता, कई प्रकार से अपना स्नेह व्यक्त किया करते थे, लेकिन ऐसा अनुभव कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी के सानिध्य में संग में नहीं कर रहे हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में ही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान ने अपने योग माया के प्रभाव से वसुदेव और देवकी में वात्सल्य भाव को जागृत कराया, वो मन में नहीं मान रहे कि ये हमारे पुत्र है, पास में उनको गोद में नहीं बिठा रहे हैं, कोई स्नेह व्यक्त नहीं कर रहे हैं। तो कृष्ण और बलराम के वचन की आप हम हमारी बाल्य अवस्था, हमारी पौगंड अवस्था और किशोर अवस्था भी अब बीत रही है, लेकिन हम आपके साथ नहीं रह पाए, ये जो वचन है उनके मन में वसुदेव और देवकी के मन में वात्सल्य जगाने का ये प्रयास है कृष्ण और बलराम का। वे कहते हैं आगे कि हम न लब्धो दैव हतयोर वासो नौ भवन भवंती के, कृष्ण और बलराम ऐसे इस संसार के इस स्वामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चरा चर कहने का जिनको अधिकार है, वे कृष्ण और बलराम वे कह रहे हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था, ऐसी कोई समस्याएं थी, हम दुर्भाग्यवश आपको नहीं मिले, भवद अंति के आपके आपका संग प्राप्त नहीं कर सके, याम बालाह पित्र गेहस्था विंदन्ते लालिता मुदम, और अन्य परिवार में जैसे बालक अपने माँ का पिता का लाड प्यार का अनुभव करते हैं, लेकिन हमें ऐसा अनुभव करने को नहीं मिला, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है, कृष्ण और बलराम कह रहे हैं। इसी के साथ कृष्ण और बलराम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, आपने हमें जन्म दिया, सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो यतः न तयोर याति निर्वेशम पित्रोर न मर्त्या सदायुषः। कृष्ण और बलराम इस प्रकार के संबंधों को स्वीकार करते हैं। कृष्ण बलराम किसी को माता किसी को पिता बनाते हैं, इस प्रकार के संबंधों को स्वीकार करते हैं। वैसे कृष्ण और बलराम भगवान का कौन पिता हो सकता है? ये भगवान किसी से वात्सल्य भाव तो किसी से सख्य भाव तो किसी से दास्य भाव दास्य रस तो किसी से माधुर्य रस, अलग अलग रस अलग अलग भावों का अनुभव करते हैं, अलग अलग संबंध अलग अलग जीवों के साथ भक्तों के साथ प्रस्थापित करते हुए। तो वसुदेव और देवकी के बने हैं ये पुत्र और कह रहे आपने हमें ये शरीर दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, वैसे अन्य योनियां भी है, पशु पंछी सुकर कुकर योनि भी है, कि मनुष्य जीवन मनुष्य शरीर हमें दिया आपने, जिसमें जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति इत्यादि को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने जो हमें मनुष्य शरीर दिया, हम आपके लिए आपके सदा सदैव ऋणी हैं और हम इस जीवन में 100 सालों तक भी आपकी सेवा करते रहे तो भी उस ऋण से पितृ ऋण मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे, कह रहे हैं कृष्ण और बलराम। और इन वचनों के साथ वसुदेव और देवकी में जो वात्सल्य भाव है उसको अधिक जागृत अधिक गाढ़ा बनाने का भगवान कृष्ण और बलराम का प्रयास हो रहा है। तत्क्षण तुम अर्हत तात, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए इसीलिए कृष्ण और बलराम क्षमा याचना मांग रहे हैं। परतंत्र यो, हम स्वतंत्र नहीं है कह रहे हैं। अभिज्ञ स्वरार श्रीमद् भागवतम हम खोलते ही पहला जो श्लोक है वहां लिखा है भगवान कैसे हैं, एक तो अभिज्ञ है सर्वज्ञ है और कैसे स्वराट स्वतंत्र है। वही प्रभु अपनी इस लीला में क्या कि हम परतंत्र में थे, कंस के कारण कंस के भय के कारण। न कुर्वतोर्वा शुश्रूषाम, आपकी सेवा नहीं कर पाए, क्षमस्व इसलिए हमारी हमें आप क्षमा कीजिए। हे तात हे माता श्री देवकी, इसी के साथ वसुदेव और देवकी में कृष्ण और बलराम के प्रति वात्सल्य जगा हुआ है। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति माया मनुष्यस्य हरिर्विश्वात्मनो गिरा मोहितो अंक आरोप्य परिष्वज्या आपतुर्मुदम। अब कुछ मोह माया कुछ प्रेम कुछ स्नेह जगा तो वसुदेव और देवकी ने कृष्ण और बलराम को अंकम आरोप्य अपने गोद में बिठाया, आलिंगन दे रहे हैं, मुदम हर्ष और अत्यधिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जीवन में पहली बार इस प्रकार उनको ये वात्सल्य प्रेम अनुभव हो रहा है। सिंचन तव अश्रुधारा भी, और बालकों को गोद में रखे हैं वसुदेव और देखी देवकी बिठाए हैं और साथ ही साथ उनकी आंखों से अब अश्रुधाराएं बह रही है। स्नेह पाशे नचा व्रतो, और अभिषेक कर रहे हैं वैसे अपने आंसुओं से अपने बालों बालकों का अभिषेक. गंगा से जल लाए नहीं, जमुना से जल नहीं लाए, किसी पवित्र नदी से जल नहीं लाए, सरोवर से अपने आंखों के आंसुओं से अभिषेक कर रहे हैं कृष्ण और बलराम का. न किंचित ऊचतु राजन बाष्पकंठो विमोहितो. और इसी के साथ कहना तो खूब चाहते थे, कुछ कह नहीं पाए. बाष्पकंठो, उनका मोह उनका स्नेह जगा, गला गदगद हो उठा. एवं आश्वास पितरो भगवान देवकी सुतः. इस प्रकार वसुदेव और देवकी को सांत्वना दी. पहला मिलन हुआ, कृतज्ञता व्यक्त की, क्षमा याचना भी मांगी और उनके गोद को अंग संग को प्राप्त किए. एवं आश्वास्य, इस प्रकार अपने माता पिता का समाधान संतुष्टि करा के पितरों दोनों का. भगवान देवकी सुतः, भगवान को भगवान कैसे, भगवान देवकी सुतः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय. ये जो वासुदेवाय है, भगवान का एक नाम क्या है, वासुदेव. वासुदेव किसका नाम है, वसुदेव के पुत्र का नाम है वासुदेव. भगवान देवकी सुतः. मातामहं तु उग्रसेनं यदुनां करोद्रिपम. और अब कंस का वध हो चुका है, अब मथुरा का सारा नक्शा ही बदलेगा. अब मथुरा में पुनः कृष्ण राज राम राज की स्थापना होगी. यथा राजा तथा प्रजा. पहले भी वैसे उग्रसेन राजा तो थे, कंस के पिता है उग्रसेन, लेकिन कंस ने उस गद्दी को स्वयं ही संभाला. उतारे उग्रसेन को नीचे, उस गद्दी से स्वयं को बिठाया कंस. अब कंस नहीं रहा तो माता महम, नाना जी के पास पहुंचे भगवान कृष्ण. यदु नाम करो नृपम, और यदुओं के राजा बनाए उग्रसेन को. राजा उग्रसेन महाराज की, तो राज्याभिषेक हुआ. कृष्ण स्वयं राजा बन सकते थे, भगवान अपने वैराग्य का प्रदर्शन. वैराग्य में भगवान का एक वैभव है, ऐश्वर्य है, भोग है भगवान. और रावण का वध किए लंका में, राम स्वयं राजा बन सकते थे, लेकिन बनाए किसको राजा, आप जानते हो. तो यहां पर भी स्वयं राजा नहीं, उग्रसेन को राजा बनाए. सर्वान् स्वज्ञाति संबंधान दिग्भ्या कंस भयाकुलान. तो कंस जब राजा बना था तो जिनका निवास या राजधानी कई सारे राजा बनाए थे, मथुरा को राजधानी बनाए थे, यदुवंशी, वृष्णि वंशी, अंधक वंशी और दाशार्ह, कुकुरान आदिकान, ऐसा वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं. ये सारे राजा मथुरा से पलायन किए, दूर दूर देशों में गए, वहां निवास कर रहे थे. विदेश वास कर्षितान, और विदेश में रहने से उनको काफी कष्ट हो रहा था, कष्ट हुआ था. अब कंस का वध हुआ, भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाए मथुरा का, और पुनः उन सारे राजाओं को वापिस बुलाए, आइए आइए पधारिए मथुरा आइए. स्वगेहेषु वित्त्यै, उनके आवास निवास की व्यवस्था किए. संतर्प्य विश्वकृत, सत्कार किए, धन की व्यवस्था किए. कृष्ण संकर्षण भुजै गुप्ता लब्ध मनोरथः. तो इन सारे राजा अब नए राज में प्रसन्न थे, उनका मनोरथ पूर्ण हुआ. विक्षन्तो अहर अह प्रीता मुकुंद वदनाम्बुजम. सुखदेव गोस्वामी, यहां कथा कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से हम लोग कथा सुन, मैं भी सुन रहा हूं. ये सुखदेव गोस्वामी के वचन है. सुख मुखाद, भागवत कथा क्या है? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात. सुखदेव गोस्वामी, उनके मुखारविंद से निकले हुए वचन अमृत, कथा अमृत, भागवत अमृत है, ये उनके शब्द है. तो वो कहते हैं कि राजा महाराजा जब अब लौटे थे मथुरा, मुकुंद वदनाम भुजम, उनको दर्शन होता था मुकुंद, कृष्ण के मुखारविंद का. नित्यम प्रमुदितम श्रीमत सदयस्मित वीक्षणम, और उनका कृपा कटाक्ष भी मिलता था. भगवान देखते थे बड़ी सदय दया के साथ. पिबन्तो अक्षैर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधामुहु, पीते थे अपने आंखों के प्याले बना के, ये आंख है ना, उसका प्याला बना के भगवान के मुखारविंद का जो अमृत है, दर्शन अमृत का पान किया करते थे प्रातःकाल सायंकाल. चाय पान नहीं, अमृत पान. अथ नंदम समासाद्य भगवान देवकी सुतः. अब उस समय का जो वो समय है, विशेष समय था, प्रसंग कंस के वध के उपरांत नंद बाबा आए थे कृष्ण के साथ. वैसे कई सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल भी पधारे थे. अब उनके लौटने का समय हो चुका है. कृष्ण बलराम नहीं लौटेंगे, उन्होंने नहीं सोचा था कि कृष्ण बलराम साथ में वृंदावन नहीं जाएंगे, लेकिन उस रहस्य का उद्घाटन अब होगा। जैसे वे अब नंद महाराज को मिल रहे हैं, नंदम समासाद्य, नंद महाराज के पास गए, पुनः भगवान देवकी सुतः कहा है, शंकर शनस्य राजेंद्र परिश्वेज्य इदम ऊचतु। तो नंद महाराज के पास गए तो झट से नंद महाराज ने कृष्ण और बलराम दोनों को साथ ही गले लगाए, थोड़ा झुक के गले लगाए और दोनों को उठाए, छोटे ही बालक थे। ये अंतर है। अब देवकी और वसुदेव भी इस प्रकार स्नेह करना सीखे, भगवान ने सिखाया अपनी योग माया के प्रभाव से, उनमें भी वात्सल्य को जगाए। लेकिन यह नंद बाबा को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, कैसे प्रेम करना होता अपने पुत्रों से, अपत्यों से। तो नंद महाराज ने कृष्ण और बलराम को देखते ही झट से उनको उठा लिया। पितर युवाभ्याम स्निग्धाभ्याम पोषितो लालितो भ्रशम। और कृष्ण और बलराम दोनों नंद बाबा को कह रहे हैं, माता पिता तो अपने अपत्यों से, अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, अधिका प्रीतिर आत्मश्वे आत्मे आत्मजेशु आत्मनु अपि। अपने से अधिक प्रेम माता पिता का आत्मजों में, आत्मज मतलब पुत्र या पुत्री, आत्मज आत्मजा, उनसे अधिक प्रेम करते हैं। नंद बाबा के इस प्रेम का अनुभव करके उनके मुख से ये वचन निकले हैं, स माता सा च जननी यो पुष्णिताम स्वपुत्रवत। हाँ, वही तो माता है, वही तो जननी है, जो अपने ही पुत्र समान उन बालकों की रक्षा करे, संभाले उन बालकों को। किनको? कैसे बालक? शिशुन बंधु भीर उत्सृष्ट अकल्प कई। ने खुद के माता पिता ने परित्याग किया है कुछ बालकों का, किसी कारणवश वो अलग हुए हैं, अपने बालक की रक्षा उनका लालन पालन करने में असमर्थ है, तो इतने में दूसरे कोई माता पिता उनको संभालते हैं। वही तो असली माता है, वही तो असली पिता है। कृष्ण और बलराम नंद महाराज को क्यों कह रहे होंगे? क्योंकि वे है वसुदेव और देवकी के पुत्र, लेकिन संभाला किसने उनको? नंद बाबा और यशोदा ने, इसीलिए ये उनके वचन हैं। लेकिन अब ऐसे नंद महाराज को अब कहना पड़ रहा है, जब से जन्मे हैं हर दिन साथ में रहे, जिनके साथ वो नंद बाबा को पहली बार जीवन में अब कृष्ण और बलराम कहेंगे, यात यूयम ब्रजम तात तात। पिताश्री नंद महाराज, नंद बाबा, बाबा अब आप जा सकते हो। ब्रजम तात वृंदावन आप लौटिएगा, स्नेह दुखितान। हम जानते हैं आपको बहुत कष्ट होगा ये वचन सुन के, ज्ञातिं वो दृष्टमेश्यामो विधाय सुरिदाम सुखम। हा हा, वैसे हम आएंगे आपको देखने, हम वृंदावन जरूर लौटेंगे, लेकिन अब आप जा सकते हो। एवं सांत्वय्य भगवान नंदम सव्रजम अच्युतः। तो वैसे मैं कहने जा रहा था, हम कल्पना कर सकते? हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग भी, आप भी माता पिता हो, आपके भी पुत्र है, लेकिन नंद महाराज भी पिता है, लाखों करोड़ों गुना अधिक उनका स्नेह है कृष्ण और बलराम के प्रति। इस संसार के माता पिता कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जब वचन सुने कृष्ण बलराम की, तो नंद महाराज के मन की स्थिति क्या हुई होगी। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरही नमे। गोविंद के बिना एक क्षण भी नहीं बिता सकते प्रभु के भक्त, ब्रजवासी, वृंदावनवासी। उनको कृष्ण और बलराम कह रहे, आप जाइएगा, आप जा सकते, और आप तुम, हम यहीं रहेंगे वसुदेव और देवकी के साथ, हम कुछ समय बिताना चाह रहे हैं। इत्युक्तो परिष्वज्य, तो पुनः मिलन हो रहा है। अब पहले से भी अधिक गाढ़ मिलन नंद महाराज कृष्ण और बलराम से कर रहे हैं। प्रयण विवला पूरयन अश्रुभिर नेत्रे। आंखें आंसुओं से, जल से पूरी भरी हुई है, बह रही है। बड़े कठिनाई से नंद महाराज वृंदावन की ओर जाना प्रारंभ करते हैं। पैर जा रहे हैं ब्रज की दिशा में, लेकिन दिल नहीं जा रहा है, मन नहीं चाह रहा है वृंदावन। यशोदा को मैं क्या कहूंगा, गोपियां भी तो पूछेगी, और गायों को मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा। कृष्ण का सबसे स्नेह है, सभी सजीव निर्जीव, वहां तो निर्जीव वस्तु है नहीं, वहां का जल भी प्रेम करता है, पेड़ पौधे भी प्रेम करते हैं कन्हैया से। ऐसे कन्हैया अब ब्रज नहीं लौटेंगे, अब तो नहीं लौटेंगे। पुनः मिलामा, पुनः मिलेंगे, ऐसे कृष्ण बलराम ने कहा था। सह गोपैर ब्रजम ययो। तो नंद महाराज अन्य गोपों के साथ और ग्वाल बालों के साथ बड़े बड़े प्रयास से जा रहे थे और वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। अथ सुरसुतो राजन पुत्रयो समकारयत। कंस के भय से कई संस्कार होने चाहिए थे, नहीं हुए। संस्कारात् भवेद्विजः, भगवान को संस्कारों से अपनी चेतना को अपने जीवन को भावों को विचारों को सुसंस्कृत रिफाइन शुद्ध बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान इस प्रकार का आदर्श हम सभी के समक्ष रखते हैं। संस्कारात् भवेत् द्विजः, द्विज संस्कृति यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों द्वारा, और ब्राह्मण कौन है, अपने ही यदुकुल के आचार्य है गर्गाचार्य, वे सारे संस्कार। ततश्च लब्ध संस्कारम द्विजत्वम गर्गात यदुकुलाचार्यात गायत्रम व्रतम आस्थितो, तो गायत्री मंत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, ये सारे संकल्प व्रत संस्कार संपन्न हो रहे हैं, जो पहले होने चाहिए थे नहीं हो पाए, केवल गायों को ही चराते रहे कृष्ण और बलराम, संस्कार नहीं हुए और अध्ययन भी नहीं हुआ था। सुखदेव गोस्वामी आगे कथा को सुनाते हैं। अथो गुरुकुले वासम, कृष्ण और बलराम ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने हेतु उज्जैन जाते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन है, क्षिप्रा नदी के तट पर, जहाँ कुंभ मेला अब 4-6 महीने पहले संपन्न हुआ। भागवत में उस स्थान का नाम ऐसे अवंतीपुर लिखा है, उसी अवंतीपुर को अब हम उज्जैन कहते हैं। वहां कृष्ण और बलराम पहुंचे। काश्यम सांदीपनिम नाम अवंतीपुर वासिनम, तो काश्यप गोत्र के सांदीपानी मुनि नाम के एक आचार्य वहां निवास करते थे, उनके शिष्य बनते हैं कृष्ण और बलराम, और भी कई सारे विद्यार्थी भारतवर्ष के वहां पहुंचे हैं। सुदामा पहुंचे, सुदामा कहां के, सुदामा सुदामा पुरी के, सुदामा गुजरात के सुदामा, तो कई सारे विद्यार्थी वहां अध्ययन कर रहे हैं। दांतो गुरो वृत्तिम अनिंदिताम, पूरे इस आदर और सत्कार के साथ, जैसे भगवान स्वयं ही गीता में कहे हैं, गुरु के पास पहुंच रहा है तो कैसे, तद्विद्धि प्रणिपाते न प्रणिपात, आगे जाओ आगे बढ़ो, पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, समर्पित करो स्वयं को परिप्रश्ने न सेवया। या ब्रह्मचारी गुरु कुले वसन दांतो गुरोर हितम, गुरु का हित के लिए शिष्य अपने गुरु के आश्रम में निवास करता है, दासवत और दास के भाव से रहता है, और नीचो बड़ा नम्र जीवन। तो कृष्ण और बलराम भी सारे संसार के ये स्वामी, यद यद आचरति श्रेष्ठस, तो एक आदर्श। और भगवान और जो गीता में कहते हैं, मैं तो वेदांत कृत, वेदों को मैं जानता हूं, वेदों की रचना मैंने की है, ऐसे कृष्ण और बलराम सर्वज्ञ वेदज्ञ शिष्य बन रहे हैं सांदीपानी मुनि के और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। द्विजवर तुष्टः शुद्ध भावानुवृत्ति वृत्तिभिः कृष्ण और बलराम अन्य बालकों की तरह अन्य ब्रह्मचारियों की तरह कृष्ण कौन कृष्ण ब्रह्मचारी बने कृष्ण उनको कृष्ण दास ब्रह्मचारी तो नहीं कह सकते कह सकते या बलराम दास ब्रह्मचारी ना? क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है तो हमारे नामों के साथ दास या दासी लगाते हैं फलाना भगवान दास ब्रह्मचारी और अर्च विग्रह देवी दासी राधा रानी दासी तो कृष्ण और बलराम किसी के दास नहीं है वो वैसे सभी के बॉस है दास नहीं तो कृष्ण ब्रह्मचारी कृष्ण दास ब्रह्मचारी नहीं कृष्ण ब्रह्मचारी और बलराम ब्रह्मचारी अध्ययन कर रहे हैं माधुकरी मांगने जाते हैं अन्य बालकों के साथ तो हर रोज माधुकरी मांगने का एक परिपाटी आश्रम की होती है उद्देश्य वैसे प्रचार का है जो आसक्त गृहस्थ है उनको उनको संग देना है कुछ जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश करना है ऐसे उपदेशक प्रचारक माधुकरी के बहाने घर घर जाते हैं सुखदेव गोस्वामी भी जाया करते थे ऐसा वर्णन है सुखदेव गोस्वामी माधुकरी मांगने जाते थे और एक घर में कितना समय रुकते थे गो दोहनम एक गाय दोहने के लिए जितना समय लगता है उतना ही समय बिताते फिर नेक्स्ट डोर से प्रचार करते करते आगे बढ़ते कुछ मधु लेते कुछ माधुकरी लेते और कुछ मधु कुछ अमृत के बिंदु वहां भी छोड़ते ये आदान प्रदान की व्यवस्था समाज व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम भगवान ने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये आश्रम और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये वर्ण भगवान की रचना है तो भगवान स्वयं भी ब्रह्मचारी बने और आगे चल के द्वारका में गृहस्थ बनेंगे भगवान तो ब्रह्मचारी की हर भूमि का भगवान एक ढंग से निभाते हैं तो ब्रह्मचारी बने हैं तो माधुकरी मांगने भी जाते हैं तो कृष्ण बलराम ऐसे कृष्ण जा रहे हैं माधुकरी मांगने के लिए जिनके जिनके घर पर जाते थे भिक्षाम देही भगवान क्या कह रहे भिक्षाम दे भिक्षा दीजिए तो कौन ब्रह्मचारी कौन स्वामी सन्यासी आए हैं देखने के लिए जब उस घर के लोग बाहर आते थे देखने के लिए तो वहां उस बालक को देखते थे कैसा बालक कदा द्रक्षामि बालकम नीपमालकम माला पहना हुआ नीपमालकम कदम्ब कदम्ब वृक्ष के फूल की माला कहाँ से प्राप्त करते होंगे, वह उज्जैन में भी और ऐसी माला पहने हुए। नीप बालक मालकम और लसत तिलक भालकम, और भाल पर तिलक है। नासाग्रे वर मौक्तिकम, एक मोती मणि है। और कंठी च मुक्तावली, मुक्तावली हार पहने हैं, मोतियों का हार, मोर मुकुट है। और घनश्याम बंसी तो धारण नहीं कर रहे हैं, यहाँ वृंदावन या ब्रह्मचारी बन के आए हैं, लेकिन सारे चिन्ह हैं। पीतांबरा पीतांबर वस्त्र पहने हैं। तो ये जो दृश्य है, ऐसा सौंदर्य, ऐसा बालक सुकुमार बालक को देखते ही चित्त को हर लेते थे ये ब्रह्मचारी, भिक्षाम देही कहने वाला ये ब्रह्मचारी। तो देखते ही रहते इस बालक की ओर, हा भिक्षाम देही हमने कहा आप देख ही रहे हैं, भिक्षाम भिक्षाम दे। तो भिक्षा लेके आते थे, लेकिन आप भिक्षा हम देंगे तो बालक अब आगे बढ़ेगा इस भय से क्या करते थे, भिक्षा वैसे लेके आते ही रहते, ये लेके आओ, डाल दिया, चावल है कि नहीं, जो मिर्च नहीं दी, आश्रम में सभी सामग्री की आवश्यकता है, लेकिन चाय की पत्ती नहीं दे देते, दूध को जरूर देते। तो इस प्रकार हर घर के सामने बहुत सारा समय इस कृष्ण ब्रह्मचार्य को बिताना पड़ता था। और जब सांदीपानी मुनि के आश्रम जब पहुंचते तो इतना सारा, इतनी सारी दक्षिणा और इतना सारा सामग्री बोझ लेके कृष्ण ब्रह्मचारी पहुंच रहे, और बाकी ब्रह्मचारी उनकी झोली तो खाली, ए हरो हरो जाओ 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 आगे जाओ। हम भी जब ब्रह्मचारी बने बंबई में तो हमारी भी सेवा वैसे, पहली सेवा घर घर जाके हम चावल, फूड फॉर लाइफ, प्रसाद वितरण के लिए चावल इकट्ठा करते हैं। चावल बाजार में वैसे मार्केट में कुछ कंट्रोल था तो, और सामग्री तो दान में मिलती थी, चावल नहीं मिलता था, तो मुझे भेजा करते थे जुहू जुहू स्कीम में। हम लोग घर घर जाते तो हुआ, तो अपना मेरा भी अनुभव रहा, लोग देखते थे, हमने बेल बजाई या दरवाजा तो उसमें से देखते थे। और कभी किसी ने मुश्किल से दरवाजा खोल दिया तो कुछ चावल फेंकते थे ऐसे थोड़ा मुट्ठी भर। कभी कभी दरवाजा खुलता था तो हम कुछ आशा चावल की लेके जाते थे, प्रसाद वितरण करते मंदिर में, फूड फॉर लाइफ होता है, आप चावल दीजिए दान में, ऐसे हम भिक्षा मांगते थे, माधुकरी मांगते थे। तो कभी कभी दरवाजा खोलते ही कुत्ते को बाहर भेजे, छुप छुप जा, ऊपर से कुत्ता आ रहा और नीचे से गार्ड भी चौकीदार को बुला रहे। तो बाकी जो ब्रह्मचारी थोड़ी सामग्री लेके लौटते थे, कृष्ण इतना सारा सामग्री, इतना सारा दान धन दक्षिणा, तो धीरे धीरे बालकों ने, अब मित्रों ने सोचा, कृष्ण के जो अन्य साथी ब्रह्मचारी थे, चलो हम कृष्ण के साथ ही जाते हैं तो कृष्ण भिक्षाम देई कहते तो लोग जब भी सामग्री देते तो स्वयं ढोने लगे। तो धीरे धीरे पूरे अवंतीपुर में शोभा यात्रा, आगे कृष्णा भिक्षाम देई करते हुए जा रहे, अब पीछे उनके मित्र जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं उनको। तो भगवान ने इस प्रकार बड़ी नम्रता से हर तरह से अपने गुरु को प्रसन्न किया। सर्व नरवर श्रेष्ठो सर्व विद्या प्रवर्तको सकृत निगद मात्रेन तौ संजग्रह तुर्नृप। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का वैशिष्ट्य सुना रहे, ये नरवर श्रेष्ठो, और उसमें कृष्ण सक एक बार जो भी बात सिखाई जाती थी, समझाई जाती थी, वैसे यह आगे कहते हैं भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी है। प्रातःकाल में कोई लेसन पढ़ाते थे गुरु महाराज सांदीपानी मुनि, सायंकाल तक निपुण हो गए, परीक्षा हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया। दूसरे दिन दूसरा लेसन, दूसरी कला, सायंकाल तक उसको भी सीखी, फिर तीसरी, चौथी, इस प्रकार 64 अलग अलग कलाएं 64 दिनों में भगवान सीखे। गान विद्या, वाद्य बजाने की, नृत्य, नाट्य, चित्रकारी, तो सारे, वैसे कोई जानना चाहता है कौन सी 64 कलाएं भगवान सीखे, वो सूची भी यहां उपलब्ध है। यानी कि वेद पढ़ते थे और शास्त्रों का अध्ययन करते थे, ध्यान धारणा, ये तो पढ़ाया जाता ही था प्राचीन काल में, लेकिन हर विद्या, कई सारे विभाग, डिपार्टमेंट्स, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज आजकल के विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। प्रभुपाद बॉस्टन में थे तो वहाँ के विश्वविद्यालय को विजिट कर रहे थे, तो प्रभुपाद को दिखाए घुमा के, ये विभाग, ये रसायन है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, ये है कॉस्मोलॉजी है, ये जूलॉजी है, ये सारे विभाग देखने के बाद प्रभुपाद ने कहा वो विभाग कहाँ है, वो आत्मा का विभाग कहाँ है। यह आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जिस विभाग में पढ़ाया जाता है, ऐसा भी तो विभाग है। जब उन्होंने कहा ऐसा तो विभाग नहीं है, तो प्रभुपाद ने कहा यह सारी विद्या कैसी है, एक बिग जीरो है, एक शून्य है, ये सारे शून्य का वैसे कोई अर्थ है तब जब आगे क्या है, एक है, वो आगे एक नहीं है, तो ये सारे शून्य मिला के एक बहुत बड़ा शून्य हो जाता है। तो भगवान कई सारे विद्या सीख, आत्मविद्या भी सीखे, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये उत्तम विद्या, राज विद्या किंग ऑफ नॉलेज, अध्यात्म विद्या, इसको पढ़ने हेतु हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा ये आत्मविद्या, आत्मा का, परमात्मा भगवान का शास्त्र सीखने समझने हम यहां एकत्रित होते हैं। जिसको अलग करो अपने जीवन से, समाज से, या अध्यापन के अध्ययन अध्यापन के जो विषय उससे फिर बचता है तो धर्म ही नहीं ना या आत्मा आत्महीन परमात्मा हीन तो पशु भी समान पशु बचता है। तो भगवान 64 दिनों में 64 विद्याएं सीखे, अपने गुरु को प्रसन्न किया। अब घर लौटने का विद्या अब यस संपन्न विद्या में निपुण हुए, अब पुनः मथुरा लौटना है तो और दूसरे शिष्य ब्रह्मचारी भी अब लौटने की तैयारी में है तो गुरु की दक्षिणा देने की परिपाटी है। सभी शिष्य दे रहे दक्षिणा तो कृष्ण और बलराम भी दक्षिणा देंगे। तो ये पति पत्नी में से गृहस्थ थे सांदीपानी मुनि। हाँ हाँ इन बालकों से तो कोई विशेष दक्षिणा की मांग हमें करनी चाहिए ऐसा वे सोच ही रहे थे। इतने में धर्म पत्नी ने हाँ हाँ मैं एक बात सोच रही हूं पति देव आहो क्या है। तो वह उसने कहा हमारे उस पुत्र की मृत्यु हुई समुद्र में डूब के हमारा पुत्र मरा है। कृष्ण और बलराम जब दक्षिणा देने आएंगे तो उनसे मांग करना हाँ हाँ हमें अपना पुत्र को लौटा दो हमें अपना पुत्र चाहिए ऐसी मांग करो। तो कृष्ण बलराम जब दक्षिणा देने ही तो सांदीपानी को मिलते ही उन्होंने हाँ हाँ क्या आप इस प्रकार की सेवा कर सकते हो हम बड़े ही प्रसन्न होंगे। तो कृष्ण और बलराम आरुह्य महारथो रथम प्रभासम आसाद्य दुरंत विक्रमो तैयार हो गए कृष्ण और बलराम और रथ में विराजमान होके कृष्ण और बलराम सीधे प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर आप देखे होंगे द्वारका के कुछ दक्षिण दिशा में 100-200 किलोमीटर दूरी पर प्रभास क्षेत्र नाम का क्षेत्र प्रसिद्ध है वहां गए वहां पर उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी समुद्र के तट पर समुद्र में डूब के मरा था। तो कृष्ण और बलराम वहां पहुंच गए कहां पहुंच गए समुद्र पहुंच गए हम लोग कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम 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 कृष्ण बलराम जय कृष्ण
Balaram,
Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram,
Krishna Balaram,
Jai Krishna Balaram,
Krishna Balaram,
Jai Krishna Balaram. Balaram, Jai Krishna Balaram. Duranda Vikramo Sindhu Vidhi Viditva Arhanam Aharatayo.
तो कृष्ण बलराम वहां पहुंचे हैं. इस बात को समुद्र ने जब समझ लिया, हाँ कृष्ण बलराम आए हैं, तो समुद्र के देवता समुद्र वहां पधारे और कृष्ण बलराम का माल्यार्पण, विधि पूर्वक पूजा अर्चना स्तुति समुद्र ने की. प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तट पर प्रसन्न हुए कृष्ण बलराम इस प्रकार के आतिथ्य और स्वागत से. इसके साथ उन्होंने मांग की, तमाह भगवान आशु गुरुपुत्र प्रदीयताम, हमारे गुरुपुत्र को लौटा दो. ऐसा आदेश किए समुद्र को कृष्ण और बलराम, गुरु पुत्र प्रदीयताम. तो समुद्र उवाच, समुद्र ने कहा, देखो भाई मुझमें ही समुद्र में एक दैत्य निवास करता है. उसका रूप आकार शंख जैसा है, तो उसने तुम्हारे गुरुपुत्र का वध किया, ऐसा समाचार है. तो तुम ढूंढ निकालो उस पंच जान भी, उस असुर का, दैत्य का नाम, और स्वयं ही अपने गुरुपुत्र को प्राप्त करो और आप लौट सकते हो. तो कृष्ण और बलराम, अंतर जल चराहा कृष्ण दैत्य पंच जनो महान, जहां दैत्य का निवास, तो दैत्य को ढूंढने हेतु कृष्ण और बलराम कूद पड़े उस समुद्र में और ढूंढ रहे हैं, कहां है वो शंख के आकार का वो पंच जन असुर, ढूंढ रहे हैं. अथा अगाध समुद्र का जल है, ढूंढ रहे हैं कहां है. अस्ति इति नारुतो नूनं तच्छ्रुत्वा सत्वरं प्रभु जलम आविश्य. तो जल में प्रवेश किए, ढूंढे तम हत्वा, उसकी हत्या किए. न पश्यद उदरे अर्भकम, पेट में देखा, हमारे गुरुपुत्र तो इस असुर के पेट में होगा. गुरुपुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इस पंच जन असुर के उदर में भी. तदंग प्रभवम शंखमादाय रथमागतम. तो कृष्ण लौटते लौटते अब तो जिस उद्देश्य आए थे वो तो यह सफल उद्देश्य नहीं हो रहा है, इस पंच जन का वध तो किए और उसका शरीर शंख जैसा शंख ही था, तो भगवान लौटते लौटते उस शंख को साथ में लिए और यही शंख पांचजन्य कहलाता है। भगवान ये शंख को लेके सीधे संयमनीम नाम यमश्य पुरीम यमलोक गए। संयमनी नाम की राजधानी है यमराज जी की, यहां नहीं मिला तो शायद हमारे गुरु का पुत्र अपने पूर्व कुछ कर्मों के फल भोगने शायद वहां गया होगा, वहां पहुंचाया होगा, तो वहां गए और वहां भगवान ने शंख ध्वनि की है। पहली बार भगवान ऑफिशियली अपना शंख बजा रहे, अभी अभी शंख प्राप्त हुआ उनको, पहले कभी शंख नहीं था उनके पास। शंख लिए सीधे गए संयमनीपुरी और क्या बजा रहे, अपना स्वयं का शंख बजाए भगवान। शंखम प्रदमधौ और शंख जब बजाए भगवान के वहां पहुंचने से ही उस यमपुरी में सारा सारी क्रांति का उसरा उल्टा पलटा हो गया। वहां के सारे जीवों ने भगवान भी आगमन भगवान का आगमन हुआ, शंख ध्वनि की नाद जो दिव्य ध्वनि है उसके श्रवण मात्र से वहां के सारे बद्ध जीव यम यातना भोगने वाले जीव उनका उद्धार हो रहा है। वो चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ की ओर गमन कर रहे हैं। और हरि सारा कारागार ही खाली हो गया। एक व्यक्ति के उद्धार के लिए या प्राप्ति के लिए वहां पहुंचे थे, उसके बहाने सभी का उद्धार किए प्रभु। शंख ध्वनि का नाद सुन के जैसे समुद्र देवी पहुंचे थे, शंख ध्वनि का नाद वो नहीं सुने थे लेकिन कृष्ण बलराम को मिलने आए स्वागत किए जैसे समुद्र देवता, तो यमराज भी आए हैं। उवाच अवनतः पूरा प्रणाम करके पूछते हैं, हे विष्णु येव यो करवाम किम, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। कृष्ण बलराम से पूछ रहे हैं, आनयस्व गुरुपुत्रम इह आनितम, तो वही याद समुद्र को जैसे कहे हाँ गुरुपुत्र का लौटा दो, तो यहां भी कह रहे हैं तथेति, वैसे ही होगा। और यमराज गुरुपुत्र उनके यमपुरी में प्राप्त हुआ, गुरुपुत्र को लाए और अपने गुरुपुत्र को लीजिए। उस गुरुपुत्र को लेके कृष्ण और बलराम सीधे संयमनीपुरी से अवंतीपुर आए। गच्छन्तम् सम्यक संपादितो वत्सो और लौटाए, दत्वा स्वगुरवे भूयो अपने गुरु पुत्र को लौट आए, गुरु दक्षिणा ही थी उनकी, गुरु प्रसन्न और गुरु की पत्नी कितनी प्रसन्न हुई होगी, दोनों प्रसन्न, दोनों ने आशीर्वाद दिया, कीर्ति वामस्तु पावनी, आपकी कीर्ति सारे विश्व भर में फैलती रहे और कीर्ति का यश का गान जो भी सुनेंगे वो पावन बनेंगे, पावनी होगी, और वही कीर्ति का उसी यश का लीला का गान हम भी यहां सुन रहे हैं, और गुरु महाराज का आशीर्वाद जो कृष्ण बलराम को प्राप्त हुए उसी का फल हम यहां सुन रहे हैं, उसी यश गान का श्रवण कर रहे हैं, और वो लीला पावनी लीला हमको पावन बना रही है। राय गौर प्रेमनंदे हरि 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 बोल। समनंदन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनो अपश्यन्तो बह्वाहानि नष्टलब्धधनायैव। और कृष्ण और बलराम, राम और जनार्दन कहाँ है, उनको जब पुनः मथुरा के वासी देखे, कई सारे दिन महीने बीत चुके थे, पुनः जब कृष्ण बलराम का दर्शन किए तो नष्ट लब्धा धनायव, जब कोई व्यक्ति को खोया हुआ धन पुनः मिल जाता है तब जैसे वो प्रसन्न होगा, वैसे ही प्रसन्न हुए थे मथुरा के सारे निवासी कृष्ण बलराम के पुनः आगमन के कारण। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम।